ॐ नमः शिवेभ्य ॐ नमः शिवेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः जम जस्य जम्मि देशे येन विहानेन जम्मि कालम्नि नादं जिनेन नियदम् जम्मं वाहवमरणं वा संतस्य तं निदेशे तेन विहानेन तं निकालम्नि कोसकदिवारेदुं इन्दो वातः जिनिन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदि दौवाणि सौपजाये सोसदिट्टि सुतो कार्तिकेय उपेक्षा में से ये उदाहरण हमने देखा है। क्रमबद्ध पर्याय का विषय हमारा चल रहा है और उसमें डॉक्टर हुकुमचंद भारिल लिखित जो क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर अनुशीलन यानी उनका जो चिंतन है उसको यहाँ प्रस्तुत किया है। कल हमने यहाँ हिंदी में 21 पेज तक लिखा था, गुजराती में कई पानों से वो मंगलाचरण के पश्चात दो पेज आगे 15 पेज पर अभी चलेगा विषय आगे 15 गुजराती 15 का लास्ट करेगा। हमने कल देखा था कि क्रमबद्ध पर्याय उसके नाम पर से ऐसा लगता है कि ये पर्याय की बात है, परंतु क्रमबद्ध पर्याय यह पर्याय की चर्चा नहीं है, परंतु ये पूरे द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो सारी वस्तुएं हैं उसकी जो सुव्यवस्थित व्यवस्था है, द्रव्य में ही ऐसी निश्चित व्यवस्था है कि वो अपना परिणमन खुद करे, इतना ही नहीं परंतु वो परिणमन जो है एक एक समय परिणमन वो जो है एक एक समय का परिणमन वो निश्चित है, जो होने वाला है वही होगा। एक बार जिस क्रम से होगा उसी क्रम से होगा, बाद में होने वाले पर्याय पहले हो पहले वाले बाद में, ऐसा होगा नहीं कि पहला कोई बुढ़ा हो बाद में बच्चा हो फिर तरुण हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो जिस क्रम से होगा उसी क्रम से होगा, जो होना है वही होगा और जिस समय होना है, कोई कहेगा नहीं क्रम तो वही रहेगा परंतु नहीं हम तीन भोग के बाद में अभी हम लाएंगे अभी ये पर्याय। जैसे आदिनाथ के समय ये स्टोरी सबको मालूम है, कथा मारीची की, महावीर का जीव जो उनका पोता था उन्हीं के साथ दीक्षित हो गया था और जब समोसरण में बात आई कि यहाँ ऐसा कोई जीव है कि जो आगामी तीर्थंकर होने वाला है, तब उन्होंने कहा हाँ ये जो मारी के वो 24वां तीर्थंकर होगा। बात क्या कहेगी, वो तीर्थंकर होने की उनके सर्वज्ञ के ज्ञान में जो बात आई उसका कथन हुआ, परंतु कथन हुआ कि इतना पीछे मैं होऊंगा नहीं, मैं अभी दूसरा तीर्थंकर होके दिखाऊंगा। क्या नहीं माना, क्रमबद्ध को नहीं माना, सर्वज्ञ को नहीं माना, ये पूरा आवरणवाद हो गया, महान मिथ्या हो गया उसके। क्यों, क्योंकि चौथे काल का काल कितना लंबा है, आदिनाथ तो तीसरे काल के अंत में हुए और महावीर तो चौथे काल के अंत में हुए, तो वो सारा पूरा चौथे काल का जो टाइम है वो कितना है मालूम है आपको। देखो एक पहला काल, दूसरा काल, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ऐसे जो अवसर दिन है उसके ये 6 काल खंड होते हैं। उसमें पहला है वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, दूसरा है वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, पहला 4 कोड़ा कोड़ी सागर का पहला, दूसरा है वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा है वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का और चौथा, पांचवा और छठा मिल के 1 कोड़ा कोड़ी सागर का काल होता है इतने वर्षों का। तो उसमें पांचवा और छठा तो 21,000 वर्षों का है, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर में से ये 42,000 वर्ष कम कर दो, इतना पूरा काल है चौथे काल का। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं इतना काल पश्चात, मैं तो अभी मुनि दीक्षा लिया हुआ है, मैं तो अभी तीर्थंकर होकर बताऊंगा। दूसरा आदिनाथ तो हो ही चुके थे, उनका तो समोचरण था ही वहाँ, तो मैं इनके पश्चात वाला तीर्थंकर होकर दिखाऊंगा। तो जो क्रम से पर्याय होने वाली सर्वज्ञ ने जानी थी, उस पर्याय को पलट कर मैं अभी लाके दूंगा, अभी मैं वो पर्याय लाऊंगा, मैं अभी तीर्थंकर होके बताऊंगा, ऐसा जो अभिप्राय में कितना महान मिथ्यात्व पड़ा, यानी उन्होंने सर्वज्ञ को सही रूप में नहीं माना, सम्यक दृष्टि नहीं हो। वो तो द्रव्यलिंगी मुनि पद लिया था तो वहाँ तो सम्यक दृष्टि नहीं था, परंतु बाद में वो जब भी त्रिपुष्टि नारायण बना था उसके पहले कहीं सम्यक दर्शन प्राप्त किया होगा, परंतु वहाँ भले सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, परंतु वो सम्यक भी अगर होता तो भी भ्रष्ट होकर चलाए, क्योंकि वो सर्वज्ञ के बात पर उसकी श्रद्धा नहीं है। यानी या तो मैं उसको जल्दी लाऊंगा या मैं उसको थोप दूंगा, ये प्रसंग होने वाला है। जैसे द्वीपायन की कथा भी मालूम है कि नेमचंद के समोचरण में, नेमचंद जो तीर्थंकर है, तभी समोचरण में बात आई कि इसमें ये देवों ने बनाई हुई है स्वर्ण की नगरी है द्वारका, क्योंकि तीर्थंकरों के लिए तो इंद्र आकर वो नगरी की आगे रचना करते हैं। श्री कृष्ण के जैसे भाई थे वो, तो ये सारा यादव कुल तो वहाँ बसा हुआ था द्वारका में। तो जब भाई थे उनके ज्ञान में क्या कि 12 साल के बाद उन्होंने जलती हुई दी थी, जलेगी ऐसा भी नहीं, ज्ञान में तो सारे होते हुए प्रतिभाषित होता है। तीनों काल के सारी घटनाएं उनको प्रत्यक्ष हो जैसे अभी हमारे सामने हो रही है, इस तरह से सिनेमा तो में हम देखते हुए एक के बाद घटना दिखती है। हमको कोई पिक्चर देख के आए तो ये 3 घंटे का सारा हम क्या कहते हैं कि एक के पीछे एक हमको क्रम से वो सारी घटनाएं पता चलती है, परंतु ये सारी 3 काल की बातें एक साथ उनको प्रत्यक्ष और जैसे सामने हो रही है ऐसी दिखती है। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे होने वाले, द्वारका जलने वाली है, तो जिनका दृढ़ श्रद्धा था उन्होंने तो वो बात सुनकर वैराग्य प्राप्त किया, कितने तो मुनि हो गए, कितनों को तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अरे ये कैसा संसार का स्वरूप, अभी इतना वैभवशाली द्वारका और वो कैसे जल के खाक हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा, अकेला कृष्ण और उसका भाई बलराम वो बचेंगे, उसके माता पिता भी वहाँ जलकर खाक हो जाएगा। परंतु वहाँ ये यादवों को इतने सारे राजा थे, उनको क्या ख्याल आया, अरे नहीं ये तो ऐसे होने वाली, तो उसके लिए हम कुछ प्रिवेंशन, उसका भी जैसे अभी साइंटिस्ट को कोई खोज निकलती है ना कि ऐसे ऐसे होने वाला है, तो उसके रोकने के लिए सारे प्रयत्नशील हो जाते हैं। तो सारे प्रयत्न क्या किए उन्होंने, तो दारू का निमित्त बताया था, तो दारूबंदी हो गई, या तो राजा ही थे उन्होंने पूरे राज्य में अपने दारूबंदी नशाबंदी कर दी, कोई दारू नहीं पिएगा, और जो कहीं वो सड़ा सड़ने वाला गलने वाला जो कुछ माल था ये सारा दूर उठाकर जैसे बाहर जंगल में, हाँ जैसे पहाड़ों पर जाके दरी में फेंक दिया, सारा माल दारू वगैरह जो कुछ थी वो सारा फेंक दिया बाहर। और क्योंकि उन्होंने इतना बताया था ना कि दारू के निमित्त से राजकुमार उनको ऐसा वो द्वीपायन मुनि को तकलीफ देंगे और वो द्वीपायन मुनि के क्रोध के कारण द्वारका जलेगी, तो वो द्वीपायन का जीव था उसको भी अरे अपने कारण ये द्वारका जले वो अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ से चले गए। मुनि रिक्शा ली हुई थी तो मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं तो मेरे क्रोध के कारण द्वारका जलेगी कैसे, ऐसा सोचकर वहाँ से विहार करके अन्यत्र चले गए। 12 साल के बाद वो तो 12 साल बीत चुके, जब उन्होंने गिना कि 12 साल बीत चुके हैं, अभी जो बताया था टाइम वो तो बीत चुका, अभी मुझे जाने में कोई हर्जा नहीं है, अब मैं जाके द्वारका का हाल देखूंगा। तो क्या हुआ कि वो जो राजपुत्र सारे पिकनिक के लिए गए थे जंगलों में और इतनी प्यास लगी तो कहीं कुछ पानी नहीं मिला, तो वहाँ जो इकट्ठा हुआ पानी हुआ था और उसमें ये सारी दारू बनाने की सारी सामग्री उसमें डाली थी, वो सड़ा गला कर 12 साल में उसका मध्य हो गया। उन्होंने पानी समझकर उसको पिया, पानी समझकर पिया और वो आते आते वो तो यानी मदहोश हो गए। तो आते तो देखते तो सामने द्वीपायन मुनि दिखे उनको रास्ते में, तो दिखे अरे यही द्वारका जलाने वाला है तो मारो इसको करके पत्थर फेंक कर उनको मारने लगे। तो इतना क्रोध हुआ कि वो अशुभ तेजस नाम का उनका समुद्घात होता है, जैसे माए बाजू के खंडे से अशुभ तेजस शरीर निकलता है, तो ये आग लगाकर पूरी द्वारका को जलाकर फिर मूल शरीर में आता है और फिर उस मुनि को भी भस्म करके वो नरक में चले जाते हैं। यानी ये सारी घटनाएं ऐसी ही बननी थी, परंतु उसको रोकने के जो जो प्रयत्न हुए वे सारे उससे होने में कारण हुए। हाँ वो 12 साल कैसे उन्होंने गिने, तो अधिक मास आता है और 3 साल के बाद अधिक एक एक मास आता है, उस अधिक मास को वो गिनना भूल गए। तो ये सारी घटना ऐसी सुनिश्चित थी जो सर्वज्ञ पर, जिसका उनके वाणी पर भरोसा है, उन्होंने तो ये तो ऐसे होने वाली ही है उसको एक्सेप्ट करके, और ये संसार का कैसा स्वरूप है ऐसा जानकर उससे हट गए और अपने आत्मा का अनुभव करके अपना कल्याण कर लिया। और जिसको आगामी कुछ हम भविष्य के लिए कोई बातें सुनते हैं ना, तो उसको प्रिवेंट करने, उसके रोकने में हमारा सारा पुरुषार्थ उसी की तरफ जाता है। कभी ऐसा नहीं सोचते कि ये क्या संयोग है, अभी अच्छा है कभी बुरा होगा कभी अच्छा होगा, परंतु इनसे मैं कोई भिन्न हूँ थी और मुझे मेरा अनुभव करना है, ऐसे हम सोचते हैं, वो आने वाली दुर्घटना को टालने में हमारा सारा पुरुषार्थ चला जाता है। हम अपनी बात सोचेंगे, हम कोई पता चलता है ऐसे ऐसे होने वाला है, कोई बीमारी और ये बनने वाली बीमारी, अभी हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो महीने में वो जिंदगी चली जाएगी कहीं से, तो सारा हमारा पुरुषार्थ किसने लगे, उसको कैसा रोकना, कहाँ जाना, अमेरिका में जाना, कैसा इलाज करना, उसमें कितने मालूम है अभी ये बचने वाला है, फिर भी उस समय ऐसा प्रयत्न नहीं होता कि अभी ये समय मेरा अवसर आ गया, अभी मृत्यु को महत्व रूप में करने का समय आ गया है, मृत्यु सामने दिख रही है, रोग जब होता है तो अधिक बल अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए अपना अनुभव करने का, और यदि अनुभव हो तो उसमें अधिक स्थिर होने का, क्योंकि ये तो अवसर सुअवसर कहते हैं, यदि तो पता चला ना कि अभी तो ये नष्ट होने वाला है और मैं तो अनादि अनंत हूँ, तो हम जब अपने को मनुष्य रूप ही मान लेते हैं तो सारा ही प्रयत्न उस विशिष्ट दुर्घटना को टालने के लिए होता है। सबने जैसी जीव भी इलाज करेगा अपना, परंतु उस समय उसका अधिक सारा ही, वो करते हुए भी उसका सारा चिंतन सारा जो है उसका अंतरंग में वो मन में चलता रहेगा, ये शरीर से और ये राग बुद्धि इलाज कर रहा है, फिर भी उससे भी उससे ऐसा क्या मैं कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, तो उससे उसका भेद ज्ञान हर हमेशा चलता रहेगा और अधिक चलेगा। तो ये सारी बातें भी आएगी इस क्रम से, ठीक है। हाँ पर्याय, ये पर्यायों का क्रम निश्चित है, वो एक पर्याय नहीं है, जैसे हम कहते हैं असमान जातीय पर्याय। हाँ बोलो। हाँ नहीं, क्रमबद्ध पर्याय है, हमने ये सिद्धांत बताया, ये सिद्धांत है, यानी पर्याय क्रम रूप से यानी निश्चित होती है, नियमित उसी क्रम से आती है और होने वाली होती है, उसी समय होती है, ये कहाँ है ये सारा, ये स्वभाव किसने है, पर्याय क्रम से आने का ये जरा पूरा विश्व ही ऐसा है, सारे छह द्रव्य ही इस तरह से है कि उसमें ऐसा विशिष्ट योग्यता है कि उसके पर्याय उसी तरह से बने, तो ये वस्तु व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था है, यानी वस्तु में ऐसी निश्चित स्वतंत्र ऐसी व्यवस्था है कि जिसके कारण वो हर एक वस्तु, अभी सभी जीव द्रव्य है, अनंत जीव है, परंतु एक एक जीव की अपनी सारी पर्याय क्रमबद्ध निश्चित है कि नहीं है। अभी कोई चार जीव सम्यक को प्राप्त करते हैं, कोई नरक का है, कोई स्वर्ग का है, कोई सीरियंस है, कोई मनुष्य है, अभी उनके भी आगे की सारी पर्याय अलग अलग अपनी अपनी योग्यता अनुसार होगी कि नहीं होगी, कि सम्यक को प्राप्त होते ही सारे विपराग बन गए, तो उनके भी परिणाम एक एक समय के परिणाम सारे सुनिश्चित। केवल ज्ञानी के ज्ञान में ये बातें आती है, क्योंकि सर्वज्ञता ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है कि वो सारी ही बातें निमित्तों को भी जान लेते हैं और एक एक पर्याय के क्रम को भी जानते हैं। उन्होंने जाना इसलिए हमारा क्रम या हमारा परिणमन पराधीन होता है ऐसी जो बुद्धि होती है जीवन। प्रश्न वहीं पर होता है कि जब उन्होंने देखा है, जब होना है, तो अकेला काल नहीं देखा उन्होंने, हम क्या जब होना है इतना ही पकड़ लेते हैं, परंतु जैसा होना है वो भी उन्होंने देखा है कि नहीं देखा, जैसा ने वो सारे ही पर्याय को समझो, उसके पहले की 100 पर्याय भी क्रम से देखी कि नहीं देखी, सम्यक तो होने का विशिष्ट काल यहाँ पर है, उसके पहले क्या कर रहा था ये आत्मचिंतन में लीन था, उसके पहले क्या उसने तत्व निर्णय किया था, उसके पहले क्या स्वाध्याय बराबर तैयार किया था, उसके पहले वो समझा था, उसके पहले जरा कषाय मंद हुई थी और कोई ऐसा मिला उसको कि जरा बाबा चलो ये सुनो, तो ये सारे पर्यायों के क्रम सुनिश्चित है और वो उन्होंने जाने। अभी हम यहाँ आते हैं और स्वाध्याय करते हैं, उसमें भी अपना पुरुषार्थ हरेक का लगा हुआ है। तो ये सारा ही जो पर्याय 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 करके जो पूरा अखंड एक प्रवाह है, वो सारे को सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। वो क्यों पराधीनता में वो सारी बातें क्रम से आएंगी, अभी पुस्तक में चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल निश्चित है। हर एक द्रव्य में, पुद्गल में भी, धर्म अधर्म आकाश काल सारे द्रव्यों में, यानी भले वो जीव द्रव्य हो या अजीव द्रव्य, हर एक द्रव्य में उसमें ही अंतरंग में ऐसा ही, उसके एक एक द्रव्य में ऐसे अपने अपने धर्म पड़े हैं कि एक एक समय में वही पर्याय उसी क्रम से निश्चित जैसी होनी है वही हो ऐसा धर्म द्रव्य में ही विद्यमान है। क्योंकि पर्याय अलग क्या है, पर्याय तो द्रव्य का ही वर्तमान एक अवस्था है। हम तो समझने के लिए पर्याय है, गुण है, द्रव्य है, ऐसा समझे। ये तो शुरू में प्राथमिक में हमें द्रव्य कहने से पता नहीं चलता द्रव्य क्या चीज है, या मैं आत्मा हूँ कहने से कुछ पता नहीं चलता। तो इतना सारा भेद कर करके समझाते, जैसे सिद्धांत प्रवेशिका हम सीखते हैं, उसमें ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है, ये इतना स्वतंत्र है, परंतु ये एक वस्तु की अखंड की बात हो रही है कि कोई इतने भेदी प्रबोधों में हम उलझे रहते हैं और वो पहला हम भूल जाते हैं कि बात कहाँ से चली गई, कि मैं एक जीव द्रव्य हूँ। वो कैसा हूँ इसको जानने के लिए हमने सारी सिद्धांत प्रवेशिका सीखी, सारे आगे के हम सीखते गए, और फिर वो मूल ही भूल गए क्या, ये अभेद अखंड की बात हो रही है। ये सारा समझकर जो जिसका हमने ये सारा विशेषण या वर्णन देखा है, अभी उस एक रूप मैं जो हूँ उसके ऊपर अपना ज्ञान ले जाना। ये अंदर बाहर कुछ चीज नहीं, अपने को हम शरीर रूप मान रहे हैं। तो जब पता चला कि मैं तो ज्ञान रूप हूँ, तो ये सारा जो ज्ञान रूप भाषित हो रहा है वही मैं हूँ, तो उस पर दृष्टि जानी चाहिए। वो क्रम से आएगी, वो पंचाध्याय में भी ये सारी बातें आई। इतना सुंदर वर्णन समय दर्शन का भी, कैसे प्राप्त करना, कैसा दृष्टि का विषय, उसके बारे में इतनी सारी जो उलझने हैं ना, वो सारी एकदम क्लियर हो जाएगी। कौन सा शरीर का? हाँ देखिए, वो तो पुद्गल का वो निमित्त है, जीव उसमें निमित्त है, निमित्त है, परंतु उसके पुद्गल में ऐसी शक्ति है कि वो स्वयं वर्गनारूप हो जाए, अनेक परमाणु जुड़कर अभी ये बॉक्स बनी। तो हमें क्या लगता है ये कारखाने में उन्होंने इस तरह से किया, जीव ने किया इसलिए बनी, परंतु इस एक एक पुद्गल में योग्यता है ना इस रूप बनने की, गंधरूप बनने। तो इसने यही पुद्गल यहाँ क्यों नहीं आए, आपने ही बनाया है, तो ये पुद्गल को आपने डब्बा रूप क्यों नहीं बनाया, ये खम्बे रूप क्यों है, अभी यही पुद्गल डब्बे रूप क्यों हुआ, तो इसमें कुछ योग्यता है ना अपनी। कोई भी घटना घटती है ना, तो हम तो उसी एक विशिष्ट घटना पर अनेक जीवों के अलग अलग भाव होते हैं। जैसे हमारे घर के सामने ब्रिज बना, तो पहले तो हम क्या कह रहे हैं, कितना आवाज आता है, क्या है वो, कितना पैसा खाया ये वो, हम कहाँ देखते हैं। परंतु उस रूप उस परमाणु की रचना होना, उस रूप वो विशिष्ट स्ट्रक्चर तैयार होना, ऐसी योग्यता उसमें खींचनी थी, तो उसकी योग्यता भी थी उस समय उस जीव के, ऐसे जिसके जो भाव होने थे वो भी होने थे, ये सारा सुनिश्चित है। हम उसको अपने एंगल से देखते, अपने क्या फायदा है, लाभदायक है कि नहीं है, और सारे उसी के ऊपर अपने राग द्वेष चलते। तो हमें तो वस्तु व्यवस्था जाननी है कि एक एक समय की एक एक पर्याय सुनिश्चित है प्रत्येक द्रव्य। पहले तो ये अपने श्रद्धा में लेना है ना, कि उसको स्वामी जी कहते ना, अरे हाथों पाड़, यानी वस्तु व्यवस्था ऐसी है उसको अंदर से सच्चे दिल से स्वीकार तो करो, वो परिणमन जो होगा वो आगे होगा। पहले तो सर्वज्ञ का स्वरूप की ऐसा ही है, वो लिखा ना कल, निश्चय दो ही निश्चित प्रकार के ऐसे ही है, ऐसा जो मानता है, हमने इसमें पढ़ा था ना, निश्चय दो आया था शब्द। हाँ फिर पूछिए आप। होके दिखाऊंगा जल्दी। हाँ
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 देखो ऐसे भाव सहज आते ही है। अब हमें वस्तु का पता चल गया, अभी इतना तो पता चलेगा कि प्रत्येक द्रव्य की अपनी भी सारी पर्याय सुनिश्चित है। अभी सुनिश्चित है तो उसको किसको करूं मैं? अब समझो घर के मेरे सारे काम करने वाले कोई ना कोई है हरे, तो अभी मुझे करने के लिए कुछ काम ही नहीं बचा, तो मैं क्या आराम से बैठूंगी? बराबर ये लौकिक की बातें करें। वैसे अभी मुझे ना परद्रव्य की पर्याय करने की चिंता रही और ना मेरी अपनी पर्याय बदलने की चिंता रही, तो निश्चिंत हो गई कि नहीं हम? निराकुलता हो गई कि नहीं हो गई? तो निराकुलता हो गई तो ये सारे क्रम ये पर्याय कहाँ से आने वाली है? द्रव्य में से पर्याय होगी, द्रव्य की ही ये अवस्थाएं हैं। तो अभी बस द्रव्य की तरफ देखते रहो, पर्याय कैसी है पलटने वाली। अभी क्रमबद्ध करके हम वो पर्याय क्या हो रही है उसकी तरफ देखते रहेंगे, तो पर्याय तो समय 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 बदलेगी। हमारे ख्याल में थोड़ी मिनट की बात आएगी, सेकंड की बात आएगी, परंतु ये बदलने वाली पर्याय की तरफ जब तक देखते हैं तब तक नए नए पर्याय उत्पन्न होगी, तो हमें नए नए राग द्वेष होंगे। बराबर, यानी पर्याय की तरफ, क्योंकि अभी तो जब तक समय दर्शन नहीं है तब तक ज्ञान जिस चीज में जुड़ेगा वहाँ उसको राग द्वेष हुए बिना रहेगा नहीं। इतना ही नहीं, उस राग द्वेष का वो स्वामी बनकर कर रहा है, उसको वो अपना स्वरूप मानकर कर रहा है और मैं करने वाला हूँ मानकर कर रहा है। जब सम्यक दृष्टि जीव को राग द्वेष तो होते हैं, परंतु वो राग द्वेष को भी वो होने वाले करके जानते, उसका स्वामित्व नहीं है, वो अपने से भिन्न उसको समझ रहा है वो, कि ये ज्ञान भिन्न है और इसमें साथ में जो राग का भी ज्ञान हो रहा है वो अपना ज्ञान अलग है और राग भिन्न है। हमें पता चलता है ना, जब क्रोध आ रहा है हमको पता चलता है, सामने वाले को बच्चे को बोलते अपने, तू हट जा मेरे सामने से, भी मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत, फिर पता नहीं मैं चप्पट लगा दूंगा, तो समझ में आता है ना ये अभी आ रहा है। वहाँ भी बेध्यान होता है परंतु उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं है, तो सम्यक दृष्टि जीव को भी राग द्वेष होंगे परंतु उसका स्वामी बना नहीं। तो ये राग द्वेष तो होते रहेंगे जब तक परद्रव्य की तरफ देखेंगे, तो इसलिए उपाय क्या है? तो अपने स्वद्रव्य तरफ देखना, जो पलटने वाला है, नया नया उत्पाद हुए उत्पाद हुए उत्पाद हुए अपने भी क्यों न हो, उसकी तरफ देखेंगे तो विकल्प और राग होते रहे। जो अभेद हर समय एक जैसी जो चीज रहने वाली है उसकी तरफ देखेंगे तो उसमें कुछ नया बन नहीं है, कुछ घट नहीं रहा, कुछ नहीं, तो शांतता है ना, निराकुलता है। वहाँ चेंज होने वाली चीजों की तरफ देखेंगे तो कुछ न कुछ राग द्वेष उत्पन्न होने वाले। अब जो कायम एक सदृश जो परिणाम वाली जो ध्रुव अपना त्रिकाली पारिणामिक भाव का है जिसको, उसको ध्यान में लेंगे तो हमें अभी वो विकल्पों की तरफ हमारे लक्ष्य हट गए ना। हमारा लक्ष्य कहाँ है? वो ध्रुव द्रव्य पर, ध्रुव शाश्वत जो द्रव्य है उसके ऊपर हमारा लक्ष्य है, तो वहाँ निराकुलता उत्पन्न होती है, आत्मा का आनंद आता है, राग द्वेष से जो स्वामीपना है वो हट जाता है। और ये तो जिसको निर्विकल्प अनुभूति कहते हैं, निर्विकल्प यानी अभेद की अनुभूति। हम तो निर्विकल्प यानी ऐसे समझते कि वो सब विचार रहित हो जाना, ज्ञान शून्य हो जाएगा तो हम निर्विकल्प हो गया, ऐसी बात नहीं है। कोई विकल्प के अर्थ वो सारे आएंगे अभी संचार देने, वो तो उसका विषय अभी मैं नहीं लेती। तो निर्विकल्प यानी अभेद अनुभूति, जिसको हमने द्रव्य गुण पर्याय एक समय की पर्याय, वो कौन सी ज्ञान की पर्याय, वो दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, उसकी इतनी पर्याय, उसके समय होने पर क्या क्या, ये सारी बातें हम सीख गए। जैसे पृथ्वी का गोला है तो उसके ऊपर हमने वो नक्शे में तो उसके ऐसे लॉन्गिट्यूड वगैरह वो सब देखते है, अक्षांश रेखाओं, तो ये बम्बई कहाँ है तो इतने डिग्री है और इतने डिग्री इस पर, इतने विषुववृत्त है, कर्कवृत्त सारे। अभी आप एरोप्लेन में जाते हैं तो वो लाइन कहीं दिखती आपको? क्यों नहीं दिखती? वो इमेजिन करके प्लेस आउट करने के लिए वो हमने बनाए। वैसे द्रव्य एक अखंड अभेद है, निर्विकल्प है, विकल्प का अर्थ होता है भेद। द्रव्य में ऐसे कोई टुकड़े टुकड़े नहीं है, द्रव्य तो अखंड अभेद है, परंतु हमने द्रव्य क्या है कैसा है उसको समझने के लिए उसका ये सारा भेद करके समझा है। यानी उसमें ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं है, परंतु ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे कोई कंपार्टमेंट नहीं है उसमें। आता है ना, ऐसे हम कहते कोई राजा पराक्रमी है, शूरवीर है, दिखने में अच्छा है, ये सारे उसके गुण हुए, तो वो गुण कहाँ हो गए? वो उसका पूरा राजा का जो व्यक्तिमत्व है उसमें सारे वो गुण है, उसको हम अलग अलग करके समझा रहे हैं, परंतु वो एक व्यक्ति है। वैसे ये सारा जो हम सीख रहे हैं शुरुआत में, तो ये बहुत आवश्यक है कि खाली आत्मात्मा करने से तो आत्मा मिलने वाला नहीं है, खाली नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम कहने से उसका भाव प्रतीत में आने वाला नहीं है। तो इसके लिए परम आवश्यक है कि शुरू में अरिहंत का स्वरूप क्या है, सिद्ध का स्वरूप क्या है, फिर ये द्रव्य गुण क्या है, वो द्रव्य में किस तरह से ये सारी बातें, ये सारा समझने के पश्चात जब अपनी अनुभूति करना है, आत्मानुभूति करना है, तो एक अखंड अभेद ऐसी द्रव्य की, यानी अपने द्रव्य की, अपना अनुभव करना है ना, तो इसलिए अपने द्रव्य की ओर मुड़ने को कहा, तब ये समय दर्शन की प्राप्ति होगी। तो सवाल क्या था आपका? हाँ, तो पुरुषार्थ कहा रहा। हाँ, तो तभी आएगी रे, हमें अकेला काल के ऊपर लगता है, परंतु ये सारी बातें आएगी आगे आगे, ये सारा उत्तर आएगा, उसमें पांच समय वगैरह सब समझाएंगे, ये सब आएगा, इसमें सारे प्रश्न उठा के उसके उत्तर दिए, क्योंकि हर एक जीव के यूजुअली यही प्रश्न उठता है कि पुरुषार्थ क्या है। अभी इसमें से हम पढ़ेंगे ना, तो आपका सब सारे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। आप तो लिख के रखिए पीछे के पेज पर, जब घर जाइए ना, वो सब लिख के रखना, और ये सारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे इसमें, और हम चर्चा भी बहुत खूब करेंगे इसके ऊपर। तभी ये 21 पेज पर हिंदी में और गुजराती में 15 पेज पर। देखो बहुरी, सम्यक दृष्टि से ऐसा निश्चय है, उसको निश्चय है क्या? अभी जो हमने गाथा में पढ़ा था ना, जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान करते ही जन्म व मरण व लाभ अलाभ सुख दुख होना जिनेन्द्र भगवान दिव्य ज्ञान करी जाना है, किस जीव के किस देश में किस काल में किस विधान करते ही जन्म मरण लाभ अभा अलाभ नियमतई हो है, काही दूर करने को इंद्र अहिंद्र जिनेन्द्र समर्थ नहीं है। ये पंडित सदा सुखदास जी कासरीवाल का रत्नकरण सावकाचा, ये सारी बातें अभी आने वाली है, आज सत्रह सूत्र के बाद इसी ग्रंथ को लेने वाले हैं शाम को। ये सारे हमने जिनागम के उद्धरण देखे, पहला कार्तिकेय अनुप्रेक्ष्य का कल हमने पढ़ा था, और पद्म पुराण का भी पढ़ा था, उसके पश्चात भगवती दास जो है ना, जो जो देखी वीतराग ने वो भी पढ़ा था, और वो जा करी गए थे जाई समय में, वो जो बुद्धजन की जो अध्यात्म पद सघन है उसमें से, और फिर मोक्ष पाहुड़ वाली जो गाथा उसका, ये सारा भी हम देख सकते, यानी शास्त्र में कहाँ कहाँ क्रमबद्ध पर्याय के बारे में कथन आता है उसकी चर्चा हमने की। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, विधान यानी उस विधान से, उस विधि से, उस प्रोसेस से, प्रोसेस पूरा प्रोसेस यानी अनेक पर्यायों का सिलसिला, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, यानी अभी ये कार्य घटा, उसके पूर्व की पर्याय कौन सी थी, उसके पूर्व की कौन सी थी, उसके पूर्व की कौन सी, और उसमें निमित्त भी आ गया। ये इसमें देखो, जिस जीव के द्रव्य है ना, जिस देश में क्षेत्र, ये परिक्षेत्र की बात, जिस काल में ये, हाँ काल आया, जिस विधान करके वो, उसमें निमित्त भी आ गया, जन्म मरण लाभ अभाव, यानी ये जो जो होने योग्य जो है वो होगा सारा, इसमें तो ये सब सारे घटाएंगे हम, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और निमित्त भी घटाएंगे। पांच समवाय जो है मालूम है कौन कौन से? स्वभाव, हाँ पुरुषार्थ, हाँ भविष्य, हाँ वो हो गए पांच का, ये सारी बातें आएगी क्रम से। अभी तो हमने स्टार्ट किया है। देखो उक्त प्रकरणों में प्रायः सर्वत्र ही सर्वज्ञ के ज्ञान को आधार मानकर भविष्य को निश्चित निरूपित किया गया है। हरेश में सर्वज्ञ की दुहाई दी नहीं होगा, वो जिनेन्द्र भगवान ने जैसा देखा वैसा होगा, और उसके आधार पर अधीर नहीं होने का एवं निर्भय रहने का उपदेश दिया गया है। स्वामी कार्तिकेय ने तो ऐसी श्रद्धा वाले को ही सम्यग्दृष्टि घोषित किया है, और इस प्रकार नहीं मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कहने में भी उन्हें किंचित भी संकोच नहीं हुआ। ये पहला जो हमने मंगलाचरण जो पढ़ा था उसकी बात है। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञता सबसे प्रबल हेतु है। हेतु यानी जब हम क्रमबद्ध सिद्ध करते हैं तो उसमें अनेक जो कारण बताए जाते हैं कि क्यों क्रमबद्ध पर्याय है, कैसे मानना, उसको सिद्ध करो, तो उसका पहला मुख्य कारण तो सर्वज्ञता ही उसका हेतु है। नहीं समझे? हाँ, क्रमबद्ध पर्याय है वो जानने के लिए उसको हम अलग अलग कारण बताएंगे, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा। उसमें सबसे पहला कारण है सर्वज्ञता, क्योंकि हमने पहले सिद्ध किया या अभी हम कहेंगे कि जो सर्वज्ञ है वो केवल ज्ञान कैसा है उसका स्वरूप हम जानते हैं। केवल ज्ञान क्या स्वरूप क्या है? सारे विश्व को यानी तीन लोक और अलोक भी और तीन काल, इनमें से सारी द्रव्यों की सारी पर्याय वो युगपत यानी एक ही समय में जानते हैं, यानी भूत की भी जानते हैं और भविष्य की भी जानते हैं। तो जानेंगे कब? जब निश्चित होगी तभी जानेंगे, क्या उलट पुलट हो सकती थी तब जान सकेंगे? नहीं होती। पुरुषार्थ उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार की वो पर्याय होनी है। यदि जिसके अनादि से हम उल्टा ही पुरुषार्थ कर रहे थे, मिथ्यात्व दशा में थे तो उल्टा ही पुरुषार्थ, उल्टा ही नहीं वो उल्टी में, उसने इसमें तो अपना पुरुषार्थ लगा ही नहीं किया आज तक, तो इसी भाव में क्यों लगा? तो इस भाव में हमने सीधा पुरुषार्थ किया, तो वो सारा पुरुषार्थ में आता है। यानी पुरुषार्थ ये जो वीर गुण की पर्याय है वो छह द्रव्यों में होगा, पुरुषार्थ हो जाता है। तो हम परंतु हम कहेंगे ऐसे कि पुरुषार्थ से हुआ, फिर उस समय निमित्त भी हाजिर होता है। निमित्त करता कुछ नहीं है परंतु निमित्त की भी उपस्थिति होती है। यदि समय दर्शन प्राप्त किया तब उसके पूर्व में उपदेश का भी वहाँ निमित्त होता ही है, भले ही जन्म में होगा पहले, जिसको देशना लब्धि कहते हैं। हमने देखा ना कि समय दर्शन किसी को होना है तो पहले क्षयोपशम लब्धि यानी संघि पंचेंद्रिय को ही होगा, विशुद्धि लब्धि यानी जो मंद कषाय रूप जो परिणाम आएगा वही तो सुनने आएगा। फिर देशना लब्धि में ये जो ज्ञानी का उपदेश है या आचार्यों का जो कथन है या पहले में जो देशना मिली है पूर्व जन्म में, और अभी कुछ थोड़ा ही सुनते ही वो एकदम उसको वो सारा ख्याल में आता है, क्योंकि पूर्व में धारणा में रखी हुई बात है अगले भाव में भी काम करती। तो ये हुई देशना लब्धि। क्या हुआ? हाँ, और ने कुछ तो देशना लब्धि, फिर प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि यानी ये जो सुन रहा है वो बार बार उसको दोहरा रहे अपने मन में, तत्व चिंतन में चल रहा है वो, ये सारा चलता रहता है, वो प्रायोग्य लब्धि। और करण लब्धि यानी आत्म सम्मुख परिणामों में वो इतना वो लीन हो जाता है कि वो विकल्प भी अपने आप छूट कर उसको आत्मा का अनुभव हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस, ये विधान इस विधि से होगा। अभी ये कार्य हो ना सम्यक दर्शन, तो उसमें भी ये सारी बातें पूर्व में होती है, तो इसको भी जानते हैं। तो कौन जीव कैसा पुरुषार्थ करेगा वो भी उनके ज्ञान में आ रहा है। यानी बिना पुरुषार्थ के केवली में जाना है इसलिए वो नहीं होगा। वो हम कहाँ लगाते हैं? अकेला सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। हम ऐसा नहीं कि केवली में देखा होगा तो पैसा आना हो तो आएगा, ऐसा कहकर हम कितना दिन घर में बैठेंगे? बैठा जाता है वहाँ तो ऐसा होता है ना, अरे कल मिलने वाला है तो आज क्यों नहीं मिले, तो वहाँ तो कितना प्रयत्नशील होता है। तो जिसकी रुचि होती है उसका प्रयत्न ही सहज ही करता है, उसको बताने की भी जरूरत नहीं, अरे ये करो ये करो ये करो, ये कोई दूसरे के लिए नहीं, जब उसकी महत्ता समझ में आती है। अब ये जो इसमें हम अभी पढ़ रहे इसका महत्व जब ख्याल में आता है कि जो अनंतानंत भवों में जो नहीं किया है वो मार्ग मुझे अब मिला है, तो उसके प्रति जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा कि आओ अभी ये सीखो जरा अभी ये दियो। अभी अपना बच्चा है तो हम उसके प्रति प्रेम होता है, राग होता है, तो उसको हम जबरदस्ती भी खिलाते, दूध नहीं पीता बच्चा छोटा रहता है, हाथ में पकड़कर पैर में पकड़कर मम्मी उसकी दूध पिलाती है, क्योंकि राग है ना। वैसे निचली वाली भूमिका में या ऐसे सहज जिसको ये मार्ग मिल रहा है, मिल गया है, उसको ऐसा सहज लगता है अरे बहुत सारे जीव इसको क्यों नहीं जानते, तो उसको भी डांट के जबरदस्ती करके या लोभ दिखा के अरे ये पुण्य का काम है चलो स्वर्ग मिलेगा या कुछ भी ऐसा, ऐसे जीवों को इस तरफ बुलाया जाता है। परंतु ये सिद्धांत तो मेन है कि किसी के करने धरने से कुछ नहीं होता। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आने वाले, प्रश्न भी पूछना, ऐसा नहीं कहते कि प्रश्न मत पूछना। क्या समय समय में जब जब कार्य होता है तो उसमें पांचों ही कारण रहते हैं। हाँ सब में समय पांचों ही समय होते हैं। सभी द्रव्य की पर्याय में समय कहाँ होते हैं, कार्य में होते हैं। जब जब कार्य बनता है तब तब पांच समवाय होते हैं, यानी पांचों कारण मिलते हैं। निमित्त तो पर द्रव्य और बाकी जो है ये सारे घटाएंगे, वो समवाय में भी सारा स्वद्रव्य परद्रव्य घटता है, यानी चार समवाय तो सारे स्वद्रव्य में है और निमित्त एक परद्रव्य, उसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटाएंगे। ये सारे अलग अलग पद्धति से निमित्त उपादान सारा उसमें घटाएंगे, चार समवाय तो उपादान के है और एक समवाय वो निमित्त का है। ये सारी बातें आएंगी, इसको डिटेल में ले लेंगे, चार्ट बना बना के देखेंगे सारा। देखो अभी आगे निष्पन्न जो ऑलरेडी दिख चुकी है उसको, यानी अतीत पर्याय जो बन चुकी है ना भूतकाल में, उसको कहते निष्पन्न। हम कहते ना कार्य निष्पन्न हुआ, यानी कार्य समाप्त हुआ, इसको कहते जो हो चुकी है पर्याय। तो निष्पन्न पर्यायों की क्रमबद्धता स्वीकार करने में तो जगत को कोई बाधा नजर नहीं आती। यानी अभी हम 50वें साल में है तो 50 साल में जो जो घटनाएं दिखी है, हाँ वो तो क्रम से हुई, वो तो सर्वज्ञ जान सकता है, उसमें तो हाफ पार्ट है। परंतु भविष्य में आने वाली घटनाएं निश्चित है, नहीं 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 मैं इतना पुरुषार्थ करूंगा तो मैं बदल के दिखाऊंगा, ऐसा अहम आता है ना, राग आता है ना ऐसा, तो उसमें जीव को क्रमबद्ध स्वीकारने में बहुत परेशानी होती है, पसीना छूटता है। देखो निष्पन्न पर्यायों की क्रमबद्धता स्वीकार करने में तो जगत को कोई बाधा नजर नहीं आती, किंतु जब अनिष्पन्न भावी पर्यायों को यानी भविष्य काल में बनने वाली पर्यायों को हाँ भी निश्चित कहा जाता है तो जगत चौंक उठता है, क्योंकि वो अपने को करने वाला है। कर्तृत्व बुद्धि जो है ना कि मैं ऐसा इसको पलटूंगा, मैं इसको परिणाम इसका ऐसा मेरे कहने अनुसार कर दूंगा, ये जब बुद्धि पड़ी है तब भविष्य की पर्याय निश्चित है ये मानने में कोई तैयार नहीं है। उसे लगता है कि यदि सब कुछ निश्चित ही है, देखो अभी आपका प्रश्न आया, तो फिर हमारा यह करना धरना सब बेकार है। कर्तृत्व के अभिमान की जिस दीवार को बहुत ठोस आधार मानकर खड़ा था, अकड़ रहा था, जब वह ढहती नजर आती, ढहती है बहती गिरती ढहती नजर आती है तो एकदम बौखला जाता है। यानी वो उसको क्या मानता था, मैं जैसा मन में लाऊंगा वैसा करके दिखाऊंगा, अब उसको भी जब पता चलता है वो सारा निश्चित ही है तो उसको एकदम ऐसा वो झिझला जाता है, गड़बड़ा जाता है, तो उसको वो फिर मानने के लिए तैयार नहीं होता कि ऐसा क्रमबद्ध नहीं हो सकता। तो वो तो इतने तक जाता है कि सर्वज्ञ को भी ऐसा जानता नहीं, जो बीत चुका उसको जानता है सर्वज्ञ, आगे वाला नहीं जान सकता, यानी सर्वज्ञ के ज्ञान पर ऐसा आरोप कर देता, इतना अभिमान उसको है अंदर से। देखो उसकी बौखलाहट यहाँ तक बढ़ती है कि जैसा सर्वज्ञ भगवान को और उनकी सर्वज्ञता को वह अभी तक हृदय से स्वीकार कर रहा था, बुद्धि से नहीं, वो अंदर में था नहीं, सिद्ध ही वो सर्वज्ञ है और कोई है नहीं ऐसा मान रहा था, अब तक तो मान रहा था। उसको जब पता चला कि सर्वज्ञ तो आगामी बातें भी जानते हैं, तो क्या हुआ, उसके प्रति भी संकित हो उठा, उसका भी विरोध करने लगा। अनेक पंडितों की ये बात हुई, जैनियों के बड़े बड़े पंडित जो सर्वज्ञ की दुहाई इतने करते थे, जब क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा स्वरूप सामने आया तो इतना विरोध करने लगे कि सर्वज्ञ नहीं, वो तो आगे वाला जानते ही नहीं, ऐसा कहने लगे। क्योंकि अभी तक सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार करता रहा है, अतः एकदम तो उससे मुकर नहीं पाता, यानी अभी उसको तो ना नहीं पार सकता, क्योंकि अब तक तो उसने सर्वज्ञ की बहुत गीत गाए थे, तो अभी तो सर्वज्ञ है नहीं ऐसा कह तो नहीं सकता, तो क्या करता है, अतः सर्वज्ञता की व्याख्याएं बदलने लगता, यानी अपने मन के अनुसार अभी वो सर्वज्ञ का स्वरूप बताने लगता है। कभी कहता है कि वे भूतकाल और वर्तमान को तो जानते हैं पर भविष्य को नहीं, क्योंकि भूतकाल में तो जो कुछ होना था तो हो चुका और वर्तमान हो ही रहा है, अतः उन्हें जानने में तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु भविष्य की घटनाएं जब अभी घटित ही नहीं हुई तो उन्हें जानेंगे ही क्या, ऐसा कभी कभी कहता है। और कभी क्या कहता है, कभी कहता है कि भविष्य को जानते तो है किंतु सशर्त जानते हैं, सशर्त जानते हैं कंडीशनल, जैसे हम कहते ना बच्चे को तो अभ्यास करेगा तो पहले नंबर से पास होगा, तो ये बराबर खाना खाएगा तो ये ऐसी ऐसी चीज होगी, हम जैसे बच्चे को समझाते हैं वैसे क्या कहते हैं कि सर्वज्ञ ने कैसा जाना है कि यदि यह जीव ऐसा पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, यदि ऐसा पाप करेगा तो नरक में जाएगा, यानी जो सिद्धांत जो करने वाला जाता है वो तो हम सिद्धांत ऐसे बताते हैं, वैसे वो क्या कहते हैं सर्वज्ञ भी ऐसा ही जानता है कि ये आप अभी पुण्य करो आप स्वर्ग में जाओ, परंतु सर्वज्ञ कैसा जानते हैं कि यह जीव पाप ही करने वाला है और नरक में ही जाने वाला है, यानी वो पुण्य करना है या पाप करना है वो हम अपने हाथ की बात मानकर बैठे हैं, रात को अपना स्वामी मानकर हम उसके स्वामी मान के बैठे हैं, और मैं अभी पुण्य करके स्वर्ग में जाऊंगा ऐसा कहता, तो क्या कहते कि सर्वज्ञ तो मानते हैं परंतु उनको सशर्त मानते, सशर्त नहीं शर्त सही कंडीशन है, कंडीशन डालते हैं, कैसे कि जो पुण्य करेगा वह सुखी होगा और जो पाप करेगा वह दुखी होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा और जो नहीं पढ़ेगा वह पास नहीं होगा, आदि न जाने कितने रास्ते निकालता है, यानी जिस पंडित ने पहले सर्वज्ञ को तो बहुत सराहा था उसकी वाणी की महिमा गाई थी, वह अब कहता है वह ऐसा जानते कि जो जो ऐसा पुरुषार्थ करेगा वही मोक्ष में जाएगा, वैसा तो वो ऐसा नहीं जानते, यानी ये तो रूल है कि पुरुषार्थ करने वाला मोक्ष जाता है, वो तो हम भी जानते हैं, तो हमसे सर्वज्ञ ने क्या बड़ा जाना, आप भी कहते हो बच्चे को पास, तुम अभ्यास करोगे तो पास होगे, अभ्यास नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, परंतु सर्वज्ञ कैसे जानते हैं कि इस जीव इस विशिष्ट तरह से अभ्यास करेगा, कैसा भी जानते कि ये इतना अभ्यास करेगा फिर भी ये बीमार पड़ेगा और या ऐसे कुछ कंडीशन होगी कि ये पास ही नहीं होगा, इस तरह से निश्चित जान रहे हैं ना सारी घटनाएं, हम तो ये तो लौकिक जैसे हम सर बताते हैं ऐसा ऐसा करने वाला जीव ऐसा ऐसा, दुकान में जाकर बैठोगे तो पैसा मिलेगा, परंतु वे कैसे जानते हैं कि ये दुकान में जा रहा है मगर ये ऐसा आग लगेगी दुकान खाक होगा उसका ये ऐसा नुकसान होगा, ये बराबर जानते हैं 100% जैसे घटने वाली है घटना वैसे वो प्रत्यक्षवत जान रहे हैं, निमित्त भी उसी को वही निमित्त जानते, हम क्या मानते ये ऐसा ही होना था, ये जीव का मरण आने वाला था, यदि यहाँ नहीं मरता तो रोग से मर जाता, यानी हम निमित्त में उलट पुलट कर देते, हम तो क्रमबद्ध पर्याय का नाम सुना है इसलिए तो कहते तो, नहीं नहीं ऐसा ही होने वाला था, इसकी शादी इसी साल में होने वाली थी अब हम क्या करें, तो ये सारी यानी उसमें बोलने के लिए उसको हम क्रमबद्ध पर्याय को अपनी चर्चा में लाते, परंतु ये सर्वज्ञ जैसा होना है ठीक उसी तरह उसी काल में उसी विधि से उसी निमित्त से होगा, ये सारे को मानने को वो तैयार नहीं है। देखो आगे पर उसका यह अथक प्रयास निष्फल ही रहता है, उसका ही नहीं जो नहीं मानने वाले का, क्योंकि कोई रास्ता है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से। यह कैसे हो सकता है कि वह सर्वज्ञ तो माने पर भविष्यज्ञ नहीं, यानी भविष्य को नहीं जानने वाला वह सर्वज्ञ कैसे हो सकता है। सर्वज्ञ का अर्थ त्रिकालज्ञ होता है, ज्ञ में जानने वाला, वो त्रिकाल को जानने वाला है। जो भविष्य को न जान सके वह कैसा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ की व्याख्या तो ऐसी है कि जो सबको जाने सो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ सबको जानने वाला। सब में क्या क्या आया, द्रव्य गुण पर्याय, तो कितने पर्याय को जानता है, सर्व पर्यायों को, सब द्रव्यों की सब पर्यायों को। तत्काल तो तुमने सूत्र पढ़े हो ना, क्या पढ़े, मैंने तो नहीं पढ़ा था आपके साथ, सर्व द्रव्य पर्याय शु केवल लक्ष्य ऐसा कुछ है ना। हाँ, अरे यही लिखा है। एक मैंने भी पढ़ा नहीं था, देखो सर्व द्रव्य पर्याय शु केवल लक्ष्य, आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र के अध्याय एक में 29वां सूत्र है। यानी सर्वज्ञ केवल ज्ञान, वो कौन कौन सी ज्ञान क्या क्या जानता है उसकी बात ही थी। आद्य परोक्षम वगैरह बातें ना मत सूत्र से। हाँ, तो ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और सर्व द्रव्य और पर्याय को जानते हैं। केवल ज्ञान का विषय तो समस्त द्रव्य और उनकी तीन काल संबंधी समस्त पर्याय है, इसका विषय एक समय में इतना जानते हैं। कितना, समस्त द्रव्य में कौन कौन आए, हाँ सारे जीव अनंत पुद्गल अनंत अनंत, वो सारा शक्ति के ऊपर ऐसे अध्यात्म रस पुष्ट हो जाता है। उसमें तो ऐसा है कि केवल ही भगवान अपने केवल ज्ञान में तीनों काल के केवलियों को जान रहे हैं। तो तीनों काल के केवल ज्ञानियों के ज्ञान में क्या क्या आता है, यानी उनके सारे के भाव, यानी जिस समय उन्होंने केवल ज्ञान पैदा किया हुआ, अभी उस समय उनका शुद्ध ज्ञान कैसा था, हर एक का अलग अलग, उसमें कितने अविभाव प्रतिच्छेद थे, वो कैसे उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, वो जीव कहाँ कहाँ से पहले भाव में कहाँ से आया था, उसके पहले कहाँ से आया था, और किस पुरुषा से उसने केवल ज्ञान प्राप्त किया, यानी ये सारे भाव अपेक्षा भी कितने भाव, अभी एक एक पुद्गल परमाणु में कितने कितने रस गंध स्पर्श वर्ण के सारे अंश होंगे, वो कैसे कैसे अनादि से अनंत काल तक पलटते होंगे, ये सारे एट द टाइम कैसे जानते होंगे, सारे द्रव्यों के, यानी एक एक परमाणु की, अभी इस विशिष्ट परमाणु की अभी तेंद्रुप अवस्था है, ये परमाणु अनादि काल से अनंत काल तक कहाँ कहाँ विराजमान था, कैसे कैसे उसकी अवस्थाएं हो रही थी, कौन कौन से स्कंद में वो जा रहा था, कब कब पर्याय हुआ, परमाणु हुआ, कब स्कंद हुआ, कौन कौन से स्कंद में गया, कौन कौन से वर्गना रूप में बदल गया, ये सारे जान रहे ना, एक ही परमाणु की नहीं, अनंतानंत सारों के, ऐसे अनंतानंत जीव द्रव्यों के, आकाश के एक एक प्रदेश को, ये सारे को जान रहे ऐसे तय, ये सर्वज्ञ कहते हैं। देखो जो कुछ हो चुका है, हो रहा है और भविष्य में होने वाला है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो वह सब वर्तमानवत, ये महत्व का है, ऐसे इसके बाद ये होगा होगा होगा, ऐसे होगा होगा और रुकने, सारी पर्याय हमको ये पता ही नहीं चलता वो कैसे जानते होंगे, क्योंकि हमारा सूक्ष्म ज्ञान जो है वो क्रम से ही जानते, अब क्रम से नहीं जानते, यानी अभी हम फिल्म देखते हैं तो क्रम से एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे घटना हमको पता चलती है, परंतु एकदम सारे ही घटनाएं आप एक साथ नहीं जान सकते, क्योंकि वो सूक्ष्म ज्ञान की उतनी शक्ति नहीं है, इसलिए हम इमेजिन नहीं कर सकते कि केवल ही एक समय में कैसे जानते होंगे सारा, और इतना सारा जानते हुए भी अपने आत्मा को भिन्न जान रहे और अपने आनंद में लीन है, जान तो सब रहे स्वभी को और पर को भी, पर को पर रूप से, स्व को स्वरूप, और अपने स्व में से जो अनंत आनंद आ रहे उसको उपभोग भी रहे, अपने भी अनंत गुणों को जाग रहे, अपने भी अनंत अनंत गुणों के तीनों काल के पर्यायों को जाग रहे। अब पर्याय में एक एक पर्याय में अविभाव प्रतिच्छेद के अंश देखेंगे तो ज्ञान का जो जघन्य से जघन्य जो पर्याय है, जिसको पर्याय या अक्षर का अनंत अभाव जो कहा है, जिनको जो श्रुत ज्ञान होता है सबसे कम ज्ञान का उगाड़, उसको कहते हैं पर्याय ज्ञान, तो उसमें भी अनंत अविभाव प्रतिच्छेद होते हैं,
और उसमें एक एक बढ़ते हुए कितने सारे सारे भेद सारे अनंत युग सब एकता चाहते, क्योंकि सर्वज्ञ का स्वरूप ही अभी तक हमारे ख्याल में नहीं आया। सर्वज्ञ का निश्चय करोगे तो उसी समय में जिस समय निश्चय हुआ उस समय समय दर्शन हो जाते। प्रवचन काल में आता है जो जान लिये रहंतम दवत्त गुणस्त पश्चयतम, तो उससे वो उनको सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चित करने जाते हैं तो अपना ज्ञान अपने स्वभाव को पकड़ लेता है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान है वो तो उनके ज्ञान की जब महत्ता आती है तो ऐसा सर्वज्ञ स्वरूप ही मैं भी हूँ वैसा भाव विकल्प नहीं करना पड़ता, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ मैं वैसा हूँ अभी वो ये विकल्प ऐसा कुछ नहीं, वो तो कर रहा है सर्वज्ञ का निर्णय और उस निर्णय में वो विकल्प विकल्प छूट जाता है और अपने आप को पकड़ लेता है। देखो वर्तमान वत स्पष्ट झलकता है, प्रत्यक्ष है वो स्पष्ट है। उक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं, पूज्यपाद आचार्य ने सत्रार सूत्र के ऊपर जो टीका लिखी है उसमें वो लिखते हैं, तेषां पर्यायाश्च विकाल भुआ प्रत्येकम अनंतानंता तेषु, यानी सर्वद्रव्य पर्यायेषु लिखा ना, तो उसका यहाँ लिखा कि नीचे उसका अर्थ पढ़ते एक एक वाक्य का, सब द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंतानंत पर्याय है। अब ऊपर संस्कृत, द्रव्यम पर्याय जातम न किंचित केवल ज्ञानस्य विषय भावम अतिक्रांतम अस्ति, इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ऐसा न कोई द्रव्य है और न पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान के विषय के परे हो, वहाँ एक वाक्य के यहाँ दो वाक्य बना लिए, इन्हें ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है और इसे कोई भी पर्याय नहीं है कि वो केवल ज्ञान का विषय न बनती हो। क्यों नहीं ऐसा? सर्वज्ञ बोले परंतु ये सर्व द्रव्य और पर्याय जो है वो केवल ज्ञान का विषय क्यों होते हैं? ऐसा कौन सा उस द्रव्य में पर्याय में कौन सा गुण है कि जो केवल ज्ञान का विषय हो सके? प्रमेयत्व गुण क्या, जरा याद करेंगे उसको? प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं आपको परिभाषा याद है? नहीं द्रव्य, देखो जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, किसी ने किसी ने सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय तो सभी द्रव्य होंगे क्योंकि उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है। तो ऐसे प्रत्येक द्रव्य में गुण ही है कि वो केवल ज्ञान के द्वारा न जान सके ऐसा होता ही नहीं है, वो उसकी अपनी स्वतंत्रता है। और केवल ज्ञानी के ज्ञान की स्वतंत्रता क्या है? वो अपने में ही रहकर वो सारे पदार्थों को उनकी सारी गुण पर्याय को जान। ऊपर अभी संस्कृत का तीसरा वाक्य, अपरिमित महात्म्यम ही तदिति ज्ञापनार्थ सर्वद्रव्य पर्यायेषु इति उच्यते, केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है, उसमें कोई लिमिट नहीं है और उसको गिन भी नहीं सकते। जब हम ये समय ज्ञान चंद्रिका में से हमने गणित विषय पढ़ा, जैन गणित आता है, उसमें संख्या के भेद देखे कि संख्यात असंख्यात और अनंत, और अनंत में भी उत्कृष्ट अनंत अनंत, जो सबसे अनंत में अनंत 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 ऐसी कोई चीज होगी वो है केवल ज्ञान के पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद, उससे बड़ी कोई संख्या हो ही नहीं सकती, सारी संख्या उसके अनंत विभाग में ही समा जाती, उसके साथ कंपेरिजन में कोई अलग संख्या है ही नहीं। तो ये केवल ज्ञान का इतना महात्म्य वो अपरिमित है, इसको नाप नहीं सकते। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सर्वद्रव्य पर्यायेषु कहा है, ये पूज्यपाद स्वामी ने ये जो सर्वद्रव्य पर्यायेषु जो सूत्र है उसकी टीका में ऐसा लिखा है। इसी प्रकार भविष्य का ज्ञान होना तो माने पर भविष्य का निश्चित होना नहीं माने, यह कैसे संभव है? यानी ऐसा तो कहते हैं कि भविष्य को जानते हैं, परंतु जानते तो निश्चित होगा तभी तो जानते हैं ना, कि अनिश्चित को जानेंगे? जैसे घटना घटने वाली है उसी तरह से जानेंगे क्या वो घटना बदल सकती है, ऐसे जानते हैं। जैसे हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, बहुत से लोगों में बहुत ये प्यार रहता है ना, चलो पूछ लो कहीं क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, तो ये ऐसी ऐसी दुर्घटना घटने वाली है। फिर वो क्या कहता है, ये इतना ये दान करो, ये पूजा करो, ऐसा ऐसा करो कि तुम्हारा संकट टल जाएगा, नहीं तो फिर तो जाना क्या, टलने वाला है ऐसा जाना, क्या होने वाला है ऐसा जाना। तो वो तो जीव को तो पता नहीं, तो ये उल्लू होते हैं ऐसे, इनके पीछे लगते हैं ना, यदि बदल सकते हो तो ये घटेगा ही नहीं, और बदल नहीं सकता तो इसने जाना क्या, कैसे जाना, घटने वाला जाने कि नहीं घटने वाला जाने। तो इसका विचार तो करते ना, तो ऐसे पीछे पीछे पागल की बांधी चले जाते हैं। देखो यह कैसे संभव, ऐसा तो सर्वसाधारण भी कह सकते हैं कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें सर्वज्ञ के ज्ञान की दिव्यता क्या रही, वो तो हम भी कहते हैं, हमें तो पता है ना कि जो पहले मनुष्य आयु बांधता है, बाद में समय दर्शन करता है वो भूभूमि में जाता है, जो समय दर्शन पहले प्राप्त करता है बाद में आयु बांधता है तो वो देव की आयु बांधेगा, ये तो सामान्य नियम है। तो ये सर्वज्ञ ने क्या ज्यादा जाना, वो तो ऐसा जानता है कि ये जीव के परिणाम ऐसे हो गया और वो वहीं पर जाएगा, एक से नहीं जाता, दोनों में डिफरेंस ख्याल में आए ना। आचार्य कुंदकुंद कहते हैं, यदि पच्चक्षम जातम पच्चायम पलयितम वनानस नहव दिवातम नानम युगमती के परुवेंती। यदि अनुत्पन्न यानी भविष्य, जो उत्पन्न नहीं हुए है वो अनुत्पन्न यानी भविष्य की, और विनष्ट यानी भूतकाल की पर्याय सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रत्यक्ष न हो तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा, वो तो हमारे जैसा ज्ञान हुआ। यदि वो ऐसे जानते हैं, यानी वो जब भूत और भविष्य की पर्याय जानेंगे तभी तो उनको दिव्य कहेंगे। धवला पुस्तक 6 में भी इसी प्रात को इस प्रकार व्यक्त किया है, नट्ठानुपन्न अत्थानम कदम तदो परिच्छेदो न केवल स्थादो बद्धस्था वेखा ए बिना तदुपत्ति ए विरोहा भावा। अभी इसका अर्थ करते हैं, नष्ठानुपन्न नठ और अनुपन्न यानी नष्ट और अनुपन्न, अस्थानम यानी अर्थानम, कदम तदो परिच्छेदो। देखो जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं और जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, पदार्थ नष्ट यानी द्रव्य का नाश नहीं होता, वो पर्याय उन सहित वाला लेना। जो पदार्थ है ने द्रव्य की जो अवस्था, यानी द्रव्य उस रूप से नष्ट हुआ और उस रूप से उत्पन्न हुआ, द्रव्य और पर्याय को अभेद करके भी पदार्थ ही नष्ट हुआ और उत्पन्न हुआ ऐसा कहने की पद्धति है। तो जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं और जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनका केवल ज्ञान से कैसे ज्ञान हो सकता है, ऐसा प्रश्न उन्होंने उठाया। प्रश्न क्या है कि जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुए उनको कैसे जानेंगे, और जो नष्ट हो चुके हैं उसको कैसे जानेंगे। तो उसका उत्तर देते हैं, नहीं नहीं है ने? ये ऐसा शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान के सहाय यानी निरपेक्ष होने से, सहाय निरपेक्ष होने से यानी कोई भी सहायता की अपेक्षा की उनकी जरूरी नहीं है जानने के लिए। केवल ज्ञान को असहाय कहा जाता है। अभी जो इंद्रिय ज्ञान है उसमें हमें कैसी कैसी पराधीनता है कि सामने वस्तु हो तो ही हम जान रहे हैं, अभी वर्तमान में है तो ही उसको जान रहे हैं, भूतकाल की भविष्यकाल की नहीं जान रहे हैं, और बिल्कुल दूर जो है अभी अमेरिका में क्या चल रहा है अपने किसी रिलेटिव की घर, वो तो अभी हम नहीं जान रहे यहाँ बैठे बैठे। तो ये इतनी सारी पराधीनता है, और वो प्रकाश भी चाहिए, वो आंखें भी ठीक चाहिए, इंद्रिय भी, ये इतनी पराधीनता है तो उसको सहाय की जरूरी है, यानी वो निमित्त से होता है ऐसी बात नहीं, परंतु निमित्त वहाँ होते हैं, परंतु केवल ज्ञान को वो सारे ही आत्म प्रदेशों से स्पष्ट प्रत्यक्ष जानते हैं, उसके लिए उनको किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं, इसलिए सहाय निरपेक्ष कहा, किसी सहारे की अपेक्षा नहीं है। देखो केवल ज्ञान के सहाय निरपेक्ष होने से बाह्य पदार्थों की अपेक्षा के बिना, यानी सामने वो चीज हो या न हो उसके बिना ही गुण के यानी विनष्ट और अनुत्पन्न के ज्ञान की उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है, ऐसे वो सिद्धांत कोश जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में उन्होंने लिखा है। आचार्य अमृत चंद्र ने सर्वज्ञ द्वारा समस्त ज्ञेयों को एक क्षण में संपूर्ण गुण और पर्याय सहित अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष जानने की चर्चा इस प्रकार की है, वो प्रवचन सार में आती है सत्वप्रति टीका टीका में, उसको पढ़ते हैं। अथ एकस्य ज्ञायक भावस्य समस्त ज्ञेय भाव स्वभावत्वात् उत्कीर्ण लिखित निखात कीलित मज्जित समावर्तित प्रतिबिंबितवत् तत्र क्रम प्रवृत्त अनंत भूत भवत भावी विचित्र पर्याय प्राभारम अगाध स्वभावम गंभीरम समस्तमपि द्रव्य जातके क्षण एव प्रत्यक्षयंतम। इसका अर्थ पढ़ते एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से, ये किसकी बात चल रही है, जीव की, मेरी अपनी। ज्ञायक भाव कैसा है कि समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव। ज्ञान का कार्य क्या है, जानना। जो जिसका स्वभाव होता है उसमें कोई लिमिट नहीं होती, उसमें कोई सीमा नहीं होती। तो ज्ञान किस किस को जानेगा, सबको जानेगा। ज्ञान कहते ही उसे जो जानता है, और जो जानता है, अभी हमारे पास आईना है, उसका क्या स्वभाव, उसमें रिफ्लेक्शन आता है, प्रतिबिंब होता है। तो कितने को उसमें क्या लिमिट है, कितने का प्रतिबिंब कर सकता है वो सामने जो है वो सारे के प्रतिबिंबित करेगा, उसमें कोई लिमिट है नहीं, ये इतने तक ही जाएगा, उसके पीछे वाली कम नहीं करेगा, कोई लिमिट नहीं। जो जिसका स्वभाव होता है उसमें मर्यादा नहीं होती, वो असीम होता है। तो जीव का स्वभाव ज्ञान है, तो ज्ञान कहते ही वो ज्ञान ही उसे कहते हैं जो सबको जानता है, वो ज्ञान का स्वभाव हुआ। अभी ये अपना उसमें मति ज्ञान चतुर ज्ञान ये भेद नहीं जानना, ज्ञान का स्वभाव क्या है, सबको जानना। देखो एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से, ये होने के कारण क्या है कि क्रमशः प्रवर्तमान यानी वो उसी क्रम से जानेंगे, क्रमशः प्रवर्तमान है प्रवर्तने वाली, क्रमशः घटित होने वाले अनंत भूत वर्तमान भावी, ये तीनों काल की विचित्र पर्याय समूह वाले यानी अनेक अनेक अलग अलग पर्याय समूह वाले, अगाध विचित्र ने अलग अलग अनेक विविध, अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को यानी जिसका अगाध स्वभाव यानी स्वभाव हरेक द्रव्य का, उसमें तो अनंत अनंत गुण है, अनेक अनंत धर्म है, वो सारों को अगाध और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे द्रव्य, ये किस तरह से जाने जाते, अगाध गाध है उसका कोई एंड नहीं है, ऐसा देखो हमने अभी बात की थी, जो स्वभाव होता है उसकी कोई लिमिट होती नहीं, असीम होता है। अभी जीव का ज्ञान स्वभाव है तो असीम है, उसमें आनंद है स्वभाव, सुख स्वभाव है वो भी असीम है, वीर्य उसका गुण वो भी असीम है, अनलिमिटेड है। तो हरेक द्रव्य में जो जो उसका स्वभाव है वो ऐसे स्वभाव है, ऐसे गुण कितने हर एक द्रव्य में, अनंत है, अमाप है, और हर गुण में अगाध शक्ति है, वो अगाध स्वभाव। हरेक द्रव्य के हरेक गुण में जो जो शक्ति है वो शक्ति अनलिमिटेड है, वो सारे स्वभाव को जानता है, वो ज्ञान स्वभाव है जीव का। अकेला ज्ञान ही स्वभाव है कि जीव में जो अनंत गुण है वो सारे अनंत रूप स्वभाव है ना, जीव का भाव है स्वभाव। तो जीव में भाव यानी गुण कितने हैं, अनंत है। परमाणु में कितने हैं, उसमें भी अनंत है, कोई भी द्रव्य ले लो उसमें अनंत है, वो उसके अपने अपने भाव है, और हरेक में अनंत अनंत शक्ति है पड़ी पड़ी। तो वो सारे अगाध स्वभाव को जानते हैं, और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को कैसे जाने, कि मानो वे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हो, उत्कीर्ण जैसे पत्थर पर वो शिला लेख वगैरह चाहते हैं या मूर्ति बनाते हैं, वो क्या उत्कीर्ण करते हैं। हाँ उतर ही है, जैसे हम वो बाहुबली में जाते हैं तो ये मूर्ति हजार वर्ष पहले बनाई, वो पत्थर में टंकोत्कीर्ण के उसको टंकोत्कीर्ण भी कहते हैं, वो टंकोत्कीर्ण पत्थर में जो करते हैं वो टंकोत्कीर्ण, इसीलिए उत्कीर्ण। जैसे ज्ञायक में उत्कीर्ण किए हो, यानी जैसे वो ज्ञायक में जैसे हम पत्थर की मूर्तियां बनाएंगे, वैसे जाने वो ज्ञान का ही वो परिणाम है अंदर बना बनाया, कितना तीनों काल के सारे द्रव्यों की सारी पर्याय मानो अंदर उत्कीर्ण की है किसी ने, वो सारे के सारे मूर्ति जैसे बनी हुई है अपने अंदर। वो क्या है कि ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हो, चित्रित हो गए है, जैसे किसी ने उसके चित्र बनाए हो, भीतर घुस गए हो, मानो वो अंदर ये सारे आकार बने हुए हो, कीलित किए गए हो। कीलित में भी ऐसे वो जानना कि जैसे वो उसमें शिला मार के फिक्स करते ना, डूब गए हो यानी उसमें निमग्न हो गए, कभी समा गए हो, एक मिक्स हो, प्रतिबिंबित हो गए हो, जैसे हम कहते ना वो जैसे अभी दर्पण में सारे प्रतिबिंबित हो गए, वैसे सारे अपने एक ज्ञायक में ये सारे ही सभी द्रव्यों की सभी गुण पर्याय उनकी सारी शक्तियाँ जैसे अंदर कीलित है, जैसे अंदर उत्कीर्ण है, तो ऐसे प्रत्यक्ष ऐसे एक क्षण में, इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है, ये सर्वज्ञ की बात है। तो ये सारे मानो कि ये सारे अंदर ऐसे किसी ने पत्थर से बनाए हुई सारी तीनों काल की मूर्तियां जैसे है अंदर, वैसे वो पड़े हैं। वो इसमें भी आता है ना शून्य ने, शून्य ने वे सर्वरत नये, वो नयो में भी इसकी चर्चा है कि जैसे देखो तो ये ज्ञान तो सारी वस्तुओं से खाली है, अभी ये पेन है वो मेरे आत्मा में मेरे ज्ञान में घुसा ही नहीं है, परंतु अभी ज्ञान ही का आकार इस पेन जैसा हुआ है, तो हम वो ज्ञान के आकार को ज्ञानाकार भी कह सकते हैं, ज्ञाकार भी कह सकते हैं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है तो प्रतिबिंब वो किसकी अवस्था है, दर्पण के सामने मैंने पेन रखा और दर्पण में भी आपको एक पेन दिख रहा है, वो दर्पण वाला पेन पेन की अवस्था है कि दर्पण की अवस्था है, हाँ बोलो भाई। हाँ मगर दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब है वो पेन की अवस्था है, ये समझो मान लो ये दर्पण है और ये पेन है और ये दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है, वो दर्पण है, दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण है क्या पेन है, आप कहेंगे हम उसको पेन का प्रतिबिंब, पर जो हमें प्रतिबिंब दिख रहा है अभी समझो दर्पण के सामने अग्नि है, वो दर्पण में भी आपको अग्नि दिख रही है, तो ये जो दर्पण में अग्नि दिख रही है वो दर्पण है कि अग्नि है, हाँ वही है दर्पण, तो वो दर्पण की अवस्था है, नहीं तो वो भी गर्म होनी चाहिए थे, नहीं तो सामने कोई चूल्हा जला था हम आईना रख देते यहाँ भी गर्म हो जाता तो हम बिना गैस के इसको गर्म कर देते क्यों हाँ तो द्रुप नहीं होता, वो उसका ज्ञान का ही परिणाम, जैसे ज्ञान में ये कल बात आई थी ना, ज्ञान में जो परिणाम हुआ रहा है वो ज्ञान का ही, परंतु ये सारे ही ज्ञान के ही परिणाम हो रहे हैं जो हम जानते हैं, तो हम कैसे बताए, खाली ज्ञान का परिणाम कहने से कैसा ख्याल है कि किसको जान रहे थे, तो वो बताने के लिए कहना नहीं कह रही है पेन का, पेन जैसे आकार अभी ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है उसको जान रही थी, इतना लंबा चौड़ा कैसे कहेंगे, हम क्या कह देते हैं ये पेन का प्रतिबिंब है, वो आईने की अवस्था है वो हम जानते हैं, वो हमने मन में निश्चित है हमको उसमें कोई संदेह नहीं है, फिर भी अभी कैसा कहेंगे कौन सा प्रतिबिंब हम देख रहे हैं, तो उसके लिए बताने के लिए निश्चित करने के लिए ये पेन का प्रतिबिंब कहते हैं, कहते पर ऐसा मान नहीं लाना, ये पेन की नहीं अवस्था, वहाँ जो अवस्था हो रही है वो आईने की अवस्था है पेन की नहीं है, वैसे सारे ये सारे मानो इसमें कीलित हो गए, जिसे हम कहते ना वो पेन मानो उसमें चला गया, ऐसा हमें वो समझाने के लिए ऐसे कहेंगे कि इतना डिप्टो उसमें प्रतिबिंब आता है मानो पेन ही उसके अंदर बैठा हो, वो तो उसका आईने की अपनी वो स्पेशलिटी है, प्रतिबिंबित करने की। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जैसे वो रिफ्लेक्टिविटी है वो आईने, हम अभी रिफ्लेक्शन की ओर हमारा ध्यान जाता है, हम आईने के सामने देखते हैं तो किसकी ओर ध्यान है हमारा, रिफ्लेक्शन की ओर, और हमें दिखना किसको है, रिफ्लेक्टिविटी को देखना है। अभी हम गए बाजार में और आईना खरीद के लाना है तो उसमें कौन सा प्रतिबिंब देख के लाएंगे, फूल का प्रतिबिंब देख के लाएंगे या कोई वहाँ गंदी कुछ चीज पड़ी है उसका प्रतिबिंब देख के लाएंगे या पेन का प्रतिबिंब देख के लाएंगे। हाँ तो उसमें कौन सा रिफ्लेक्शन है उसको नहीं देखना है, वो किस तरह से बराबर ठीक रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये पेन तो सीधा है और वो टेढ़ा परिणाम अनुसार ऐसा वक्रता वाला आईना होगा तो उसका वो रिफ्लेक्शन भी बराबर नहीं आएगा। तो हम क्या देखते हैं, वो कौन सी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो नहीं देखते, वो रिफ्लेक्शन उसका ठीक सीधा है कि नहीं है उसको देखते हैं ना, उसकी रिफ्लेक्टिविटी को देखकर हम आईना खरीदते हैं। तो वैसे ही एक जो ध्यान में ये तो सारी चीजें प्रतिभासित हो रही है वो तो हम ज्ञान को देखना है, हम उसमें किसको देखने का हर दिन रात प्रयत्न चलता है, गेयों को, वो तो गेयों का जैसा ही ज्ञान ही परिणमन हो रहा है, परंतु हम तो समझाएंगे ऐसे और ऐसा ही कथन होगा कि ये इस विशिष्ट गेय को जान रहा था परंतु हमारा लक्ष्य कहाँ है, हम ऐसा नहीं वहां समझ रहे कि वो ज्ञान का परिणमन है, वो हम गेय को ही जान रहे ऐसा समझकर हमारा सारा उपयोग गेय की तरफ है और उसी में उलझे। यदि हम उसको सच्चा ज्ञान का रिफ्लेक्शन मानते तो रामद्वेष होने का कहां सवाल था, ज्ञान का ही ये सारा, अभी ये पेन भी ज्ञान का ही मुझे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये सामने किसी ने वो गाली दी वो भी ज्ञान का ही रिफ्लेक्शन अगर माना हमने तो ज्ञान का रिफ्लेक्शन हो तो ज्ञान के रिफ्लेक्शन तरफ गुस्सा आ रहा है अपने, तो गुस्सा आ रहा है उसका अर्थ क्या है, उसको ज्ञान का रिफ्लेक्शन नहीं माना, उसको वो गे ही माना है और उसकी तरफ लक्ष्य है और इसीलिए वो गुस्सा भी आ रहा है, इन्हें सच्चा माना भी नहीं वो ज्ञान का रिफ्लेक्शन, यानी जो बात करते वो ऊपर को जानता नहीं हो, ये बातें सब, ये सब गड़बड़ी चल रही है। ये तो समझाने का, क्योंकि पर की अपेक्षा है समझाने के लिए, अपेक्षा जब लगती है पर की अपेक्षा लगती है, यही इतना ही व्यवहार है, मैं स्वरूप हूँ, मुझ स्वरूप हूँ, हर एक द्रव्य अपने स्वरूप है, ये तो निश्चय की बात हुई, परंतु अभी इस जीव के साथ इस विशिष्ट पुद्गल का संयोग है, इसका ज्ञान करने के लिए इसकी अपेक्षा बतानी है कि ये जीव अभी कहाँ बैठा है, कभी लोकाकाश के विशिष्ट क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में, ये बम्बई में यहाँ बैठा है, ऐसा कहेंगे ना, ये समझाने के लिए पर की हमने सहायता ली, पर की अपेक्षा से उसके रिलेटिव में हम, कंपेरिटिव में हम उसको बताते कि जब अन्य जीव द्रव्यों की ये अवस्था थी तब ये द्रव्य यहाँ पड़ा है, इतना इसको कैसे व्यवहार, नहीं तो वैसे सभी द्रव्य तो अपने अपने में ही है, परंतु फिर भी कौन सा द्रव्य कहाँ है, वो जो सिद्ध हो चुका है वो सिद्धालय में विराजमान है, अभी जो रखड़ रहा है वो यहाँ, हम यहाँ बैठे हैं, तो ये समझाएंगे तो अलग अलग, वो तो मध्यलोक की वहाँ अपेक्षा है, ये जीव मध्यलोक में बैठा है, वे लोग पूर्वलोक में एकदम लोकाग्र के शिखर पर बैठे हैं, तो ये तो समझाने की अपेक्षा है नहीं ना, ये जो अपेक्षा आती है, अपेक्षा सहित जो कथन होता है उसको कहते व्यवहार। देखो ये कैपेसिटी आपकी भी विश्व को जानने की, आपने कैपेसिटी बात की, कैपेसिटी कितनी हमारी जानने की, हाँ देखो हमारा ज्ञान हो रहा है ये ख्याल में आ रहा है, अभी हमने आईने में देखा एक पेन को रिफ्लेक्शन कर रहा था तो उसमें कितना जब रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी है, कैपेसिटी कितना रिफ्लेक्ट करने की, पूरा, क्योंकि रिफ्लेक्टिविटी है तो पूरे को ही रिफ्लेक्ट करेगा, वैसे अभी हमारे में ज्ञान हो रहा है ये पता चल रहा है कि नहीं, हमको अपने को ज्ञान होता है ये तो पता चलता है, तो ज्ञान होता है ना, ज्ञान स्वभाव है इसका पता चला, अब जो स्वभाव होता है वो अनलिमिटेड होता है, तो हमारी कैपेसिटी कितनी है पूरे विश्व को जानने की, ये अपने कैपेसिटी के ऊपर ही देखना है, हम कहाँ देख रहे हैं अभी, क्या जान रहे हैं, उसको मत देखना है। अभी क्या जान रहे हैं, अभी कैपेसिटी पूरी है। आत्मा को भी नहीं, आत्मा को भी कैसा जानने का, आत्मा को क्या कर रहा है आत्मा? हाँ, वो जान रहा है ऐसा जानना, उसको ज्ञायक रूप से जानना है। हम क्या करते हैं, वो खाली एकदम शून्य सा हो जाएगा, ज्ञान में कुछ नहीं आएगा, तब वो निर्विकल्प हो जाएगा, ऐसा मानकर उसको जानने की कोशिश करते हैं। सारा शून्य हो जाएगा, मेरे ज्ञान में कुछ नहीं आएगा तो मैं आत्मा को जानूंगा, ऐसा नहीं है। अभी आपको आईने का ही उदाहरण दे दो, आईने में ऐसी पोजिशन कब आएगी कि उसमें कोई रिफ्लेक्शन न हो तो मैं आईने को देखूंगा, ऐसा कभी सोचते हो? यानी हमको आईना लाना है, परंतु ऐसा आईना लाना कि जिसमें उसमें कोई रिफ्लेक्शन न हो। हाँ, तो वैसे आत्मा तो कभी ज्ञेयों से खाली है नहीं, जिसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो, उसके ज्ञान में कुछ नहीं आ रहा हो, ऐसा कब होगा ही नहीं, तीन काल में कभी नहीं होगा। कुछ जानना तो उसका गुण है, कोई ना कोई जानने रूप ज्ञेय का वहाँ विद्यमानता होगी। उसी समय में ये जानने वाला जो उसका गुण है, ये ज्ञान की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी की ओर देखता है। कुछ ख्याल में आता है ना? तो हमारा लक्ष्य कहाँ है कि ज्ञेय की तरफ, ज्ञेय की तरफ। वो उसको भी हम ज्ञेय मान के जानते हैं, वो जो अपने ज्ञान में आ रहा है, अपने ज्ञान में ये चीज आ रही है ना, तो ये इसको जाना किसने जाना? मैंने जाना। तो मैंने जाना तो मेरे में ज्ञान करने की कैपेसिटी है। अब ये कैपेसिटी यानी मैं क्या कर रहा था, मैं जान रहा था, ये तो एक पर्याय हुई इसको जानना। परंतु ये जानने की जो शक्ति है मुझ में, वो कब से है? अनादिकाल से, त्रिकाल वाली है वो, त्रिकाल वाली। उस शक्ति को किसने निर्माण किया? स्वयं। और वो स्वयं अभी ये सामने है, इसको जानना, ये इसको भी जानना। तो इससे जो ज्ञान का परिणमन हुआ, वो भी शक्ति किसमें हुए? स्वयं में ही है। तो ये जो अपना जो है स्वभाव, उसकी तरफ जाने, स्वभाव को पकड़ना है। हम क्या कहते हैं, यानी वो ज्ञायक रूप जो है, जानने रूप जो मैं हूँ, उसको पकड़ना है। हम किसको पकड़ते हैं? एक विशिष्ट ज्ञेय को पकड़ते हैं, या कोई चीज ज्ञान में आ रही, कोई आवाज आ रहा है बाहर से, या कोई बच्चा चिल्लाया, तो हम क्यों गुस्सा करते कि हम उसको गेम को हटाना चाहते हैं। विकल्प अपने में आ रहा है कि आत्मा ऐसा है वैसा है वैसा है, हम क्या चाहते हैं? विकल्प का ज्ञान को हटाओ, विकल्पों को हटाओ, यानी क्या? विकल्प के ज्ञान से खाली हो जाओ, ऐसी कोशिश होती है ना। बच्चा चिल्लाया तो क्यों गुस्सा आया? कि वो जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान से मैं खाली हो जाऊं, यानी वो ज्ञान को हमने अज्ञान रूप करना चाहते हैं। अपने अपना अभिप्राय टटोलना क्या है वो? तो ज्ञान में ज्ञेय आते रहेंगे, और तब ज्ञेय के ज्ञान को, यानी वहाँ का लक्ष्य हटाकर ज्ञान स्वभाव को पकड़ना है। आईने के सामने रोज आप एक बार जाना। अब जो हम अपने मुंह की तरफ, रिफ्लेक्शन की तरफ है, उसी समय रिफ्लेक्टिविटी की तरफ जब देखने लगोगे, तो रिफ्लेक्शन कहाँ छूट जाता है? गौण हो जाता है। ऐसे मुख्य गौण करने की अपने ज्ञान की कैपेसिटी है। तो जब हम ज्ञेय को या जिसका ज्ञान कर रहे हैं, उसको जानने में ज्यादा उसको मुख्य करते हैं, तो आत्मा गौण हो जाता है। आत्मा हर समय के ज्ञान के पर्याय में आ रहा है, अनुभव में हर एक के, वो आता है समय स्थान में, आवाल गोपाल सबकी समझ में आ रहे हैं। तो आ रहा है तो क्यों नहीं जान रहे? क्योंकि हमने उसको हमेशा गौण किया, हमेशा ज्ञेय को मुख्य किया है। क्यों, बहुत भारी हो रही क्या? नहीं हो रहा तो अच्छा है। तो आत्मा हमेशा हम गौण करते हैं। आईने में जो हम हमेशा लाते हैं, तो आईना है ये तो पता है, और उसको गौण करके हम रिफ्लेक्शन को मुख्य करते हैं। सुबह उठते अपना चेहरा देखते ना उसमें, यानी उसमें अपना आत्मा का स्वभाव को पकड़ने की कोशिश करना कि अभी मैं जान रहा हूँ। विशिष्ट चीज ज्ञान में आ गई तो ये किसने जाना? वो जानने वाले की, वो ज्ञान शक्ति की ओर अपना उपयोग लगाना। तो ये ज्ञेय तो गौण हो जाते हैं, विकल्पों का भी जो ज्ञान कर रहे हैं, अन्य किसी चीज का, वो गौण होकर ज्ञान स्वभाव को जब जानने लगते हैं, आत्मा को तो हमेशा जानता ही रहेगा, वो जानने से कभी खाली नहीं होगा। क्या जान रहा हूँ वो भी नहीं, मेरी जो शक्ति है जानने रूप वो उसको मुख्य करना है। जैसे अभी मैं जान रहा हूँ तो जान रहा हूँ को मुख्य करना, क्या जान रहा हूँ उसको कौन कर देना, कौन सी वो भी नहीं, वो मैं जान रहा हूँ तो मैं को लेना मुख्य, कि जान रहा हूँ ये तो अपने ख्याल में आ रहा है, अभी ये जो जान रहा है तो मेरा स्वरूप क्या है कि ज्ञायक है, तो ज्ञायक में अकेला ज्ञान को नहीं है, अखंड सारे अनंत गुणों का पिंड अभेद रूप उसको ख्याल में लेना, तो मैं जान रहा हूँ तो मैं के ऊपर इम्पोर्टेंस देते जाओगे तो उपयोग मैं को पकड़ेगा। चार बातें होती है, देखो मैं जान रहा हूँ तो मैं हुआ यानी ज्ञाता, वो ज्ञान हुआ यानी जान रहा हूँ किसको, उसको जान रहा हूँ वो ज्ञेय, और ज्ञान की क्रिया भी हो रही थी, तो इसी चार ही बातें आती, तो हमारी सारा मुख्य हमने किसको किया है, मैं तो हुआ गौर, मैं को हमेशा अनादि से गौण में ही रखा, जो पूरा कार्य कर रहा है एक एक समय में ज्ञान का उसको तो पूरा गौण कर दिया, और किसको मुख्य किया, किसको, उसको, उसको, फिर वो अच्छा है वो बुरा है वो मेरे काम का है मेरे बहुत इसका कोई काम नहीं, इसमें सारा अपना उसी पर ऊपर उपयोग है, उसमें राग द्वेष करते क्योंकि उसमें इष्ट इष्ट मान लेते हैं, क्योंकि जानने का जैसे कार्य हो रहा है वैसे चारित्र का भी साथ में कार्य चल रहा है, राग द्वेष का वो, और श्रद्धा का भी कार्य अहम स्थापित करने का, जब अपना पता नहीं है तब इसमें जो दिखने में आए उसी में अहम स्थापित किया, ये श्रद्धा नहीं करती, ज्ञान ने अकेले ज्ञेय को पकड़ा अपने को पकड़ा ही नहीं, और चारित्र ने राग द्वेष पैदा किए, तो ये सारा इन्हें गलत ही गलत हो रहा है, जब ज्ञान अपने को पकड़ने लगेगा, ये जानने वाले को पकड़ेगा ज्ञान, और श्रद्धा भी उसमें अहम स्थापित करेगी और चारित्र भी उसी में लीनता करेगा, तो हो गया ना काम। हाँ उसमें ऐसा ही होता है कि उपयोग वहीं पर जाता है जिसकी महत्ता है, अभी ये उपयोग को वहीं मुड़ना है, परंतु वो कैसे मुड़े, वो हम जबरदस्ती करने से तो नहीं मुड़े, तो हमारा उपयोग वहीं पर जाता है जिसकी महत्ता है, अब जब हमने केवल ज्ञान का महत्व ये केवल ज्ञान का स्वरूप समझा तो अपने ज्ञान स्वभाव का भी पता चला, कि जैसे इस ज्ञायक भाव में सारे पदार्थ की ही को इतनी शक्ति अभी इसी समय पड़ी है, तब उस तरफ ज्ञान जाए, अभी ज्ञेयों की महत्ता छूटने लगी, तो बार बार अपने स्वभाव का महत्व में आता है तो उपयोग भी उसको पकड़ लेता है, फिर उसको ऐसा नहीं सोचना कि ज्ञान को कैसे जानेगा, वो तो दिखता नहीं, वो ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो तो सारा ज्ञान का कार्य ज्ञान कर लेगा, उसकी चिंता मत करना, तो जो ज्ञेय का महत्व में आ रहा है वो अभी ज्ञान का महत्व में आने लगता है अंदर, तो अपने स्वभाव की पहचान होती है, इसीलिए तो केवल ज्ञानी का हमेशा सर्वज्ञ को पहले क्यों हम लाते हैं पढ़ते समय, सर्वज्ञ की सिद्धि क्यों करते हैं, तो ये ज्ञान का स्वभाव क्या है, प्रवचन साहब में तो हरेक गाथा गाथा प्रति इतना ज्ञान का महत्व बताया है, पढ़ना अब अभी एक एक तो चालू है आपका, एक एक ग्रंथ हो जाएगा, जैसे ऐसा लगता है नाचे माथे के ऊपर लेके, हमने तो एक साथ तीन बार पढ़ा था, पहले बार पढ़ा संस्कृत हिंदी में पढ़ा ये गुजराती में पढ़ा, फिर जैसेनाचार्य की संस्कृति का पढ़ उसके साथ पढ़ा, फिर अमृतचर्य चंद्राचार्य का ओरिजिनल संस्कृत उसके साथ पढ़ा, इतना ज्ञान का महत्व आता है, और यही तो है ना कि अपना स्वरूप क्या है उसको जानना, शास्त्र में से हमको शास्त्र के शब्द तो रखने नहीं, उसके ऊपर से हमें अपना स्वरूप जानकर जब अपनी महत्ता आती है, हाँ वो रिफ्लेक्शन हमको, और दर्पण क्या दिखाने वाली उसके ना प्रतिबिंबित करने की शक्ति है, उस शक्ति को देखना, यानी उस पूरे दर्पण को देखना। वो शक्ति द्वारा हम दर्पण का ही निश्चित करते कि ये यहाँ पे ये प्लास्टिक है और यहाँ कोई दर्पण रखा है, तो दर्पण को कैसे निश्चित करते हैं, हम इन दोनों को कैसे पहचानते हैं कि इसमें प्रतिबिंबित करने की शक्ति नहीं है और इसमें वो शक्ति है। वो एक शक्ति के द्वारा हमने पूरे दर्पण को पकड़ा, वैसे इस एक ज्ञान शक्ति के द्वारा हमें पूरा आत्मा पकड़ में आ रहा है। क्या बात है, अधिक चर्चा करेंगे, अभी तो समय पूरा होने आया, एक मिनट बाकी है।
आपने ये कहा ना कि दर्पण में देखते हुए दर्पण को देखना छोड़कर उस दर्पण दिखाने वाली जो शक्ति है दर्पण, देखो मैं बताता हूँ आपको, आप आईने में मुंह देख रही है, आईने के सामने बिल्कुल खड़ी है और आपको आईने के पृष्ठ भाग पर कुछ काला सा दिख रहा है, तो काला मिटाने को आप जा रही है, तब आपका जो प्रतिबिंब है वो वहां से निकल जाएगा क्या? वो तो वहीं रहेगा, लेकिन आपका उपयोग कहाँ गया? वो काले दाग को निकाल मिटाने के लिए। वैसे ही जब आत्मा में सारी बातें झलकती हैं, अन्य पर पदार्थ भी झलकते हैं, वो झलकना बंद नहीं होगा क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही स्व पर प्रकाशक है, साथ को स्व को भी जाने और पर को भी जाने। लेकिन अभी हमारा उपयोग क्या हो रहा है, पर को जानने में ही अटका हुआ है। तब इसी वक्त ये मैं स्व को भी जान रहा हूँ तो वो अपना जो उपयोग है काला दाग मिटाने को जा रहे हैं, वैसे अपने जानने वाली जो मैं शक्ति हूँ उसके तरफ अपने स्वभाव के तरफ अपना उपयोग जाएगा, तो ये बाह्य में जो पर पदार्थ जो देख रहे थे वो उसका भी ज्ञान मिट नहीं जाएगा, वो तो रहेगा, लेकिन वो कौन हो गया समझना। अपने क्षतमस्तक की ऐसी कैपेसिटी है कि हम उपयोग या तो स्व में लगा सकते हैं या तो पर में लगा सकते हैं। तब तो ऐसे ही कहे जाएगा कि भाई पर से दृष्टि हटाकर स्व में केंद्रित करो, वो स्व में जब हम केंद्रित कर रहे हैं तब भी पर तो ज्ञान में झलकता ही है, लेकिन अपने ज्ञान का क्षम इतना कम है, कमजोरी है ज्ञान में, या तो हमको स्व ही ध्यान में आता है या तो पर ही ध्यान में आता है। लेकिन आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं, अपना कुंदकुंद आचार्य कहते हैं कि दोनों ही झलकते हैं। अब कहते हैं आवाल गोपाल सदैव अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, बोले हम आवाल भी थे और वो अभी बड़े भी हो गए, फिर हमको अभी तक आत्मा क्यों नहीं आत्मा है, क्योंकि हमने स्व के तरफ मुख्यतः दृष्टि की नहीं, उसको स्व को गौण किया और पर को ही मुख्य किया। अभी क्या करना है, पर को गौण करना है, यानी स्व में एकाग्र हो जाओ तो पर अपने आप गौण हो जाता है। नहीं बात है, आत्मा का स्वभाव तो अभी देखो, जो आईने में रिफ्लेक्टिविटी है ना, तो रिफ्लेक्टिविटी प्रकाशत्व शक्ति कहते हैं, तो प्रतिबिंबित करने वाली शक्ति, वो तो दोनों समय है, या तो आप आईने में अपना मुंह देखो या तो आईने का पृष्ठ भाग देखो हा? तो अभी हमको क्या देखना है कि हम तो जानने की शक्ति है ना, जानने वाला मैं हूँ, जानने वाला तो मैं क्या कर रहा हूँ, पर को जान रहा हूँ ना, तो पर को जानते समय भी ये पर को कौन जान रहा है, तो मैं पर को जान रहा हूँ, यानी प्रथम दृष्टि तो मैं में जाती है और बाद में पर को जानता हूँ, वैसा मैं मुझको जानता हूँ, इस तरह अपने स्वयं के स्वभाव पर त्रिकाली जो अपना स्वभाव है, ऐसा जो अनंत गुणों का अखंड एक पिंड है, उसके तरफ ध्यान जाएगा। जानने की कैपेसिटी मुझ में है ना, तो वो जो जानन हार कहो या त्याग स्वभाव कहो उसके ऊपर यह जीव ध्यान देगा तो उसको आत्मानुभव होगा।
आईने की पर्याय ना, तो उस आईने की पर्याय के लिए उसने हमने भेद पढ़ के आईने को देखा, आईना नहीं देखते हुए उसमें जो कुछ रिफ्लेक्शन अलग अलग है उसको हम देख रहे हैं। अब उसको भेद को हम गौण करेंगे और पूरा आईना देखेंगे। तो जैसे ओझल हो गए ऐसे लगते हमको, प्रतिबिंबित कर ध्यान नहीं देना, वैसे आत्मा में जो गेयों का ज्ञान हो रहा है वो आत्मा के विशेष है, आत्मा के ही विशेष है। वो हम पर को पर किसको जान रहे उसको बताने के लिए हम पर को कहते हैं, परंतु वो आत्मा में ही जो सामान्य रूप है, वेदों को गौण करके अकेले आत्मा को पकड़ना, यानी वो ज्ञान शक्ति को पकड़ना, और उसमें एक एक जो अलग अलग गेयों के आकार आत्मा में बन रहे, जिसको ज्ञानाकार कहेंगे या गेयाकार कहेंगे, दोनों तरफ से उसका वर्णन आता है। तो उसके जो भेद है उसका लक्षण छोड़कर सामान्य अभेद ऐसे ज्ञायक स्वभाव को पकड़ना, वो है आत्मा का पकड़ना। और कल बात करेंगे, अभी तो टाइम हो चुका। क्या था ये चार बात है ना आपके, वो ओके और हाँ और क्रिया, ये सारी बातें जो है वो जैन तत्व परिचय है आपके पास, उसका अंतिम लेख पढ़ना, ये चारों बातें और उसमें से आत्मानुभव कैसे करना। हाँ, ये सात तत्व और आत्मानुभव नाम का जो उसका एक लास्ट एकदम, उसमें ये सारी बातें चल जाती है। जैन वो गुजराती वाली होगी आपके पास, हाँ यहाँ तत्व जानने वाला, हाँ गे जिसको जाना वो गे, हाँ गे गे ने वो जो जिसको जाना बस, हाँ क्रिया ज्ञान की क्रिया वो प्रोसेस जो जो प्रोसेस, हाँ कंटिन्यूस परिया जावानी के ज्ञान से सुझे लो कालो सो वाणी मस्तक नवो सदा देतो रो